ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الله تبارك وتعالى کا بہت بڑا انعام و احسان یہ ہے कि उसने हम लोगों को अपने दीन के इल्म के साथ निस्बत अता फरमाई कि हमें इल्म दीन हासिल करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। जिस वक्त आप पढ़ने के लिए किसी मदरसे में गए, आपने देखा होगा कि आपके साथ और भी आप जैसे तलबा वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ते गए अपने दर्जे में, तो वो आपके साथियों की तादाद में कमी आती गई, यानी हो गया छटते गए। यहाँ तक कि जब उस इल्म की तकमील का मौका आया, फरागत का वक्त आया, तो बहुत से वो रफका जो शुरू में आपके साथ थे इल्म हासिल के जुड़े, अच्छी खासी तादाद जो है निकल चुकी थी, छट चुकी थी। अल्लाह ताला ने आपको गोया उस उसूले इल्म के इस मंजिल तक, जो आखिरी मंजिल है तकमील की, वहाँ तक पहुँचाया। ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करम है। उसके बाद जो जो लोग आपके साथ फारिग हुए हैं तकमील की है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इस इल्म को अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हों, बल्कि उनमें के बहुत से वो हैं जो दूसरे मशगलों में लग गए। इस इल्म को अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुंचाने का और इस अमानत को गोया अदा करने का मौका अल्लाह तबरक तआला ने आपको अता फरमाया, ये भी अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा करम है। हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह मरकदहू फरमाया करते थे कि हमारे इदारे के अंदर जो सिलसिला तालीम व तरबियत का चलता है, उसमें तीन फरीक हैं। एक तो इंतज़ामिया है, दूसरे असातिज़ा हैं और तीसरे तलबा हैं। तलबा वो हैं जिन्होंने अपने कुलूब की ज़मीन को असातिज़ा के उलूम के लिए पेश किया, कोई आप अपने इल्म के बीज उनकी कोई दिल की ज़मीन के अंदर बो रहे हैं। हमारे हजरत फरमाते थे कि जिस तरह एक उस्ताद का एहसान तालिब इल्म पर है, इसी तरह तालिब इल्म का एहसान भी उस्ताद पर है कि उसने उस्ताद के उलूम को लेने के लिए अपने आप को पेश किया। जैसा कि आपने इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में सुना होगा, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। सुनन तिर्मिज़ी में जगह जगह सल्त मोहम्मद इब्न इस्माइल, मैंने इनसे इमाम बुखारी से पूछा रिवायतों के मुतालिक, इलल और रिजाल के मुतालिक, बहुत सारे सवालात वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से करते थे और इमाम साहब उसके जवाब देते थे। उसकी बड़ी गोया मकदार को उन्होंने अपनी किताब में ज़िक्र भी किया है। तो वो शागिर्द हैं इमाम तिर्मिज़ी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, लेकिन इमाम तिर्मिज़ी के मुतालिक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है कि मैंने इन्होंने मुझसे जितना फ़ायदा उठाया उससे ज़्यादा मैंने उनसे फ़ायदा उठाया। वो क्या कि तलबा जो होते हैं शागिर्द, वो सवाल करते हैं, उस सवाल की वजह से असातिज़ा को जो है उसका जवाब देने के लिए तैयारी का मौका मिलता है। वह उनके सवालात और पूछने की वजह से असातिज़ा के उलूम में भी तरक्की होती है। गोया जिस तरह एक उस्ताद का शागिर्द के ऊपर एहसान है, इसी तरीके से शागिर्द का भी गोया उस्ताद के ऊपर इस माना करके एहसान है। और इसी तरीके से इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया का दोनों गिरोह पर, दोनों फरीक पर, मुअल्लिमीन पर भी और मुतअल्लिमीन पर भी, असातिज़ा पर भी और तलबा पर भी बहुत बड़ा एहसान है कि उस इंतज़ामिया ने आपको तालीम व तालुम का एक माहौल फराहम किया। इस दुनिया के झमेले में, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे इदारे जहाँ इस तरह दीनी इल्म हासिल करने वाले तलबा के लिए इस तरह का माहौल, उनकी रहाइश, उनके इंतज़ाम, और असातिज़ा के लिए माहौल कि उनके पढ़ाने के लिए गोया इस तरह इत्मीनान की गोया माहौल पैदा करना, ये मामूली चीज़ नहीं है। बहुत सी जगह पर यह होता है, एक आदमी अपने इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन हालात और जिन ज़ुरूफ़ में वो जो है घिरा हुआ है, उनकी वजह से वो अपना काम कर पाता नहीं। अल्लाह ताला ने आपको बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अब दीन के इल्म की खिदमत, उसको पहुंचाने का यहाँ मौका दिया। यहाँ की इंतज़ामिया ने आपके लिए ऐसा माहौल फराहम किया कि उसकी वजह से आप सुकून के साथ अपना काम कर रहे हैं, आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक मदर्रिस को मदर्रिस होने की हैसियत से जिन जो चीज़ें जिनकी ज़रूरतें हैं वो इंतज़ामिया ने जो है आपके लिए मुहैया की हैं, और एक तालिब इल्म को तालिब इल्म होने की हैसियत से जिस जो ज़रूरतें हैं इंतज़ामिया ने वो उनके लिए मुहैया की हैं। इस माना करके इंतज़ामिया का भी बड़ा एहसान है। गोया हमारे हज़रत फरमाते थे कि ये तीन फरीक हैं इस इदारे के अंदर, तीनों फरीक अगर एक दूसरे के साथ इस तरह मिले जुले हों और एक दूसरे के गोया अपने ऊपर जो एहसान है उसके मुतरिफ हों, और उसके साथ फिर अपने फ़राइज़ मनसबी को, ज़िम्मेदारियों को पूरी अमानत और दियानत के साथ अदा करते हों, तो फिर वो इदारा बहुत जल्द तरक्की करता है। गोया ये माहौल जो फराहम किया गया, ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से इदारे ऐसे होते हैं वहाँ असातिज़ा बासलाहियत हैं, लेकिन वहाँ ऐसा माहौल नहीं, तलबा ऐसे मुहैया नहीं किए गए जिनके सामने असातिज़ा जो है अपने उलूम को पेश कर सके, रख सकें। तो बहरहाल हमारे हज़रत फरमाते थे कि इन दोनों फरीक को गोया इंतज़ामिया का शुक्रगुजार होना चाहिए, ममनून होना चाहिए कि उनके लिए, दोनों के लिए उनके मुनासिब असबाब वसाइल और जो है माहौल इन्होंने फराहम किया। फिर असातिज़ा जो हैं उनको चाहिए ये तलबा जो हमारे हवाले किए गए हैं वो एक अमानत है, हमें उस अमानत का हक अदा करना है। हमें मसलन आपको जो 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 जमात दी गई है पढ़ाने के लिए, उसमें जो किताबें हैं या जो मौजू भी आप उसको पढ़ा रहे हैं, उस मौजू से मुतालिक आपको पूरी तैयारी करने का अहतमाम करना चाहिए। अगर उसके लिए ज़रूरत है पढ़ाने के वास्ते मुताले वगैरह की, तो वो भी पूरे तौर पर होना चाहिए। हमने अब अपने असातिज़ा से सुना, ऐसे असातिज़ा जो साल आ साल से एक किताब पढ़ाते हैं कि 50 साल हो गए, 50 साल से बुखारी पढ़ा रहे हैं, 50 साल से जलालैन पढ़ा रहे हैं, 50 साल से हिदाया या और कोई किताब फ़िका की पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि कोई हमने कभी भी बग़ैर मुताले की किताब नहीं पढ़ाई। यानी गोया इतने साल से पढ़ाने के बावजूद पढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी का एहसास इनके ऊपर ऐसा था कि उसको बग़ैर मुताले के कभी पढ़ाने की जरूरत नहीं की। ये भी होना चाहिए, ये गोया हमारी जो जिम्मेदारी है तदरीस की, उसका हक है कि हम उसके लिए उसके मुनासिब तैयारियां करें, ख़ास करके जो मौजूबात आगे दर्स निज़ामी के हैं, ऊपर के निसाब के हैं, उसके लिए तो असातिज़ा को खसूसियत के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है। और उस तैयारी में गोया पहली बात तो यह है कि हम जो मौजू पढ़ा रहे हैं, जो मादा उसको पढ़ा रहे हैं, उस मादे को खुद पहले कमा हक़हू समझने की कोशिश करें। किताब जो है वो तो एक ज़रिया है, असल मकसूद तो वो इल्म है, वो फ़न है जो उस किताब के ज़रिए से हम तालिब इल्म को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए फ़िक़ा पढ़ाते हैं, मसले मसाइल पढ़ाते हैं, तो अब उसके लिए किताबें कौन सी हैं यहाँ माला आप? कुदूरी है, कंज है, या और जो किताबें हैं। तो कुदूरी एक किताब है, तो कुदूरी खुद मकसूद नहीं है, बल्कि कुदूरी के अंदर जो है जिस इल्म फ़िक़ा को बयान किया गया है वो मसाइल मकसूद हैं। तो अब कभी क्या होता है कि साहिब किताब ने कोई मसला अपने अंदाज से, अपने इससे तरीक़े से किताब के अंदर पेश किया, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आया। तो अब उसको समझने का आसान तरीका ये है कि ये फ़न फ़िक़ा के अंदर खाली कुदूरी नहीं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, उन तमाम किताबों को आप देखें। ये बहस जो मसला चल रहा है उस मसले को आप कुदूरी में भी देखिए, और जो है मुख्तार के अंदर भी देखिए, शरह विकाया में भी देखिए, हिदाया में भी देखिए, कई किताबें इल्म फ़िक़ा की देख लीजिए। हर एक किताब वाले ने उस इल्म उस मसले को अलग अंदाज से पेश किया है। तो अब कुदूरी ने जिस अंदाज से पेश किया वो हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन वही मसला जब हमने दूसरी किताब में देखा, उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया था समझ में आ गया। उस्ताद खुद जब उसको अच्छी तरह समझे हुए हो तो फिर उसके बाद मामला आसान है। वो अपने शागिर्द को वो चीज़ मुख्तलिफ तरीके से समझा सकता है। एक चीज़ हम खुद अच्छी तरह समझे हुए हैं, हमने इनके सामने पेश की लेकिन इनकी समझ में नहीं आई, तो हम महसूस कर रहे हैं कि ये नहीं समझे हैं, तो हम उसी चीज़ को दूसरे अंदाज से, दूसरे तरीके से उनके सामने पेश करेंगे, और उससे उस तरीके से जब पेश किया तो उनकी समझ में आ गया। और जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप जब जिस वक्त पढ़ा रहे होते हैं तो वो मौजू जो आप पढ़ा रहे हैं, तो जब तलबा की समझ में आता है तो उनके चेहरों का के नुकूश जो हैं वो हमको बतला देते हैं कि बात इनकी समझ में आ रही है। और ये देखो, जब उनकी समझ में आएगी, असातिज़ा के पढ़ाने का अंदाज, उसकी जो है तफहीम और उसके इफ़हाम का अंदाज ऐसा है कि आसानी के साथ तलबा उस मतलब और मौजू को समझ लेते हैं, तो उसकी वजह से तलबा के दिलों में असातिज़ा की जो मोहब्बत पैदा होती है, आप उसको लाखों रुपये दे दें, लाखों सिक्के दे दें, उससे वो मोहब्बत आपकी उनके दिल में पैदा नहीं होगी जितनी आपके इस पढ़ाने के उस अंदाज की वजह से, जिसकी वजह से उनकी समझ में ये बातें आ रही हैं। ऐसे इसीलिए हर इदारे में वो असातिज़ा जिनके पढ़ाने का अंदाज बहुत बेहतर होता है और उनके पढ़ना अंदाज़े तफहीम से तलबा आसानी के साथ किताबों को समझ लेते हैं, तो ऐसे असातिज़ा से तलबा भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं, गोया उनके लिए उस उस्ताद की ज़रा सी नाराज़गी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, क्यों? उनको इसके साथ ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई। तो हकीकत तो ये है कि ये उस्ताद और शागिर्दी का जो ताल्लुक है ना, जिस बुनियाद पर है, इस बुनियाद पर है पढ़ाने और समझाने की बुनियाद, और ये पढ़ाने और समझाने का मकसद जितना ज़्यादा होगा उतना ही शागिर्द को अपने उस्ताद के साथ क्या होगी? मोहब्बत होगी। और जितना उसमें कमी होगी उतना ही शागिर्द जो है उस उस्ताद से कटा हुआ होगा। ये तो खाली ये तालीम व तरबियत की लाइन में नहीं, हर लाइन में। किसी जगह फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक मजदूर रखे हुए है, तो एक मालिक को मजदूर के साथ जो सलूक करना चाहिए, अगर वो मालिक उस तरह का सलूक पूरे तौर पर उसके हुकूक अदा करता है तो उसके मजदूर भी उसके साथ खूब मोहब्बत करेंगे, और जितना उन हुकूक की अदायगी में कमी होगी उतना ही दोनों के ताल्लुकात क्या होंगे? कमज़ोर होंगे। ताल्लुकात की मजबूती जो है वो इसी बुनियाद पर है, जिस بنیاد پر یہ تعلقات قائم ہوئے ہیں وہ بعد اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزدور اپنا پورا کام کرتا ہے اور جو مالک ہے وہ پوری اجرت ادا کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایک مزدور کے ساتھ مالک کو جس طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے ایسا اچھے سے اچھا سلوک کرتا ہے دونوں کے تعلقات مضبوط ہوں گے. جیسے دوسری مثال میاں بیوی کے تعلقات, شوہر اور بیوی کے تعلق ہیں تو ان کی بنیاد جن اس پر ہے. شوہر جتنا زیادہ بیوی کا حق ادا کرے گا اور بیوی جتنا زیادہ شوہر کے حق کو ادا کرے گی اتنا ہی دونوں کے تعلقات کیسے ہوں گے, استوار ہوں گے. اور اگر اس میں جتنی کمی ہو, اور جو بنیادی حق ہے, شوہر بیوی کا جو شوہر کے اوپر بنیادی حق ہے اس کی ادائیگی میں اگر شوہر کی طرف سے کمی ہوتی ہے تو شوہر چاہے اس کو اچھے سے اچھا کھانا روزانہ کھلاتا ہو, اچھے سے اچھا کپڑا پہناتا ہو, تو بھی بیوی کو اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہی حال استاد کا بھی ہے کہ استاد پڑھانے کے معاملے میں جو کیفیت ہونی چاہیے, جس انداز سے پڑھانا چاہیے اور علم اس تک پہنچانا چاہیے, اس میں جتنا بھی زیادہ وہ آگے بڑھا ہوا ہوگا اتنا ہی اس کے شاگرد کو اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوگا. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو بھی پڑھانے کے دوران پیش نظر رکھیں, مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو چیز ان کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ کما حق ہو, ان کی سمجھ میں آئے. ہمارے ایک دوست ایک جملہ کہتے ہیں کہ طالب علم کتنا ہی غبی ہو, کمزور ذہن کا ہو, کتاب نہ سمجھتا ہو, لیکن وہ استاد کو سمجھتا ہے. استاد کو سمجھتا ہے کہ میرا استاد کتنے پانی میں ہے, سمجھا کہ نہیں, اور وہ اسی کے مطابق اپنے استاد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, ادب کا, احترام کا, اس کے حقوق کی ادائیگی کا. تو بہرحال اس کے لیے بھی جس قسم کی تیاریاں ہونی چاہیے وہ کر لیں, اور تعلیم کے دوران بھی ان کی تربیت کی نسبت سے علمی, ان کی علمی تربیت, عملی تربیت, علمی تربیت کے اعتبار سے بھی ان کی نگرانی کریں کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں, تکرار کرتے ہیں یا نہیں, سبق کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں. آپ باقاعدہ ان کو دیکھیں, اگر اس کی طرف سے ان میں کوئی غفلت ہو رہی ہو تو آپ اس غفلت کو دور کیجئے, سامنے موجود رہیے, نگرانی کیجئے, کرائیے, اپنی نگرانی کے اندر جو ہے یہ کام کرائیں گے تو دھیرے دھیرے طلبہ کی صلاحیت بنے گی اور جو ہے وہ اپنے اس علم میں ترقی کریں گے. اور جس طرح علمی نگرانی ہے اسی طرح عملی اعتبار سے بھی نگرانی ضروری ہے کہ ہمارے طلبہ نماز پنج وقت, پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں, سنت وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں, شریعت کے دوسرے احکام کو, لباس وغیرہ کا کو جیسا کہ شریعت نے ہدایت کی اس کے مطابق پہنتے ہیں یا نہیں, ان چیزوں کی طرف بھی آپ کی نگرانی ہونی چاہیے. اس میں کوئی کمی ہو تو اس کمی کو دور کریں. ایک طالب علم نماز آپ کے پاس پڑھنے والا, ایک طالب علم نماز پڑھ رہا ہے, نماز کے دوران سجدہ کیا, آپ نے دیکھا کہ سجدے کے اندر جن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے اس میں کمی ہے. مثلا جیسے یہ کلائیاں ہیں اس نے زمین کے ساتھ بچھا دی, اب یہ زمین کے ساتھ سجدے کے اندر کلائیوں کو بچھا دینا یہ مکروہ ہے نماز کے اندر, آپ نے دیکھا تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں اور اس بعد میں نماز کے بعد, اگر آپ ایسا کریں گے تبھی اس کی نماز درست ہوگی, ورنہ کبھی بھی اس کی نماز ٹھیک ہونے والی نہیں. اور یہ ہر استاد کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ہمارے یہاں ڈابے جامعہ میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے, بہت بڑے محدث جو واقف ہیں ان کی شخصیت سے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا علمی مقام کتنا اونچا تھا. ایک مرتبہ مسجد کے اندر ایک طالب علم کو انہوں نے نماز پڑھنے میں دیکھا کہ کچھ چیزیں جیسے نماز میں کمی ہوتی ہے جلد بازی میں, تو اس کو نماز انتظار ٹھہر گئے, سلام پھیرنے کے بعد اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تم نے نماز اس طرح پڑھی, اس طرح نہیں اس طرح پڑھنی چاہیے. تو اب جیسا کہ طالب علموں کی عادت ہوئی تھی بہانہ بازی تاویل کرنے کی, کہ میں تو ایک چھوٹی جماعت کا طالب علم ہوں, اس نے یوں کہا. تو اس پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ چیز تو بچہ اپنے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کر کے آتا ہے, مدرسے میں بھی سکھانے کی ضرورت نہیں, آپ نے اس کی غفلت کیوں. खुद मेरी आदत मदरसे में मैं देखता हूँ किसी तालिब इल्म को कि भाई सजदा उसने ठीक से नहीं किया, कलाइयाँ बिछा दिए, या मसलन आस्तीन चढ़ा करके नमाज पढ़ रहा है, या और कोई कमी है, तो मैं बैठा रहता हूँ, इंतज़ार करता हूँ उसके सलाम का। सलाम के बाद जो है उसके बाद फिर बुलाऊंगा उसको और उसको कहूंगा कि भाई तुम सद्दा किस तरह करने का पढ़ा है तुमने, ज़रा करके बताओ तो मुझे। पहले पूछता हूँ क्या क्या पढ़ते हो, कहा नूरुलिज़ा पढ़ता हूँ। मैंने कहा नूरुलिज़ा के अंदर बाबो सिफती सलात आया है ना, उसके अंदर ना सद्दा करने का तरीका क्या बताया है, आपको मालूम है? क्या मालूम है? मैंने कहा मुझे सद्दा करके बताओ। अब नमाज ने जो किया था वैसा नहीं, अब वो बराबर अच्छा जैसा करना चाहिए वैसा करेगा। तो उसके बाद मैं कहूँगा तुमने नमाज में तो ये नहीं किया था, तो ये तो इसलिए सिखाया गया है कि नमाज सही तरीके से पढ़ो, आपने आपने ऐसा कर लिया। दूसरे उस्ताद ने देखा, उसने भी इसी तरह बुला करके, पिटाई करने की कोई धमकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कह देना काफ़ी है। किसी का पायजामा जो है वो टखनों से नीचे है, बुलाकर, मेरी आदत थी, बुलाया, भैया देखो हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका पायजामा टखनों से नीचे हो वो हिस्सा जहन्नम में जाएगा। देखो आपका पायजामा, तो वो फौरन ठीक कर देता है। अब इतना है अभी, अब उसके बाद क्या होगा? अब फौरन उसकी आदत सुधर नहीं जाती, वो फिर बाद में रहती है, लेकिन जब भी आपको देखेगा ना, तो आपको देखेगा तो पहला काम क्या करेगा, पायजामे को सीधा करने का करेगा। अब हर उस्ताद इस तरह तंबीह करेगा, मदरसे का हर उस्ताद हर चीज पर तंबीह करेगा, तो नतीजा ये होगा कि वो बच के निकल नहीं सकता। मेरी निगाहों में नहीं आया तो आपकी निगाहों में आएगा, नहीं तो आपकी निगाहों में आएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि उनके अंदर जो कमजोरियां हैं वो सारी खुद ब खुद दूर, हमारे कहे बगैर। हमने तो एक मरतबा टोका है उसको, लेकिन इसकी वजह से वो समझ गया कि इनकी नज़र मेरे ऊपर बराबर है और मेरी हर चीज़ को ये बराबर देख रहे हैं। तो हर उस्ताद के मुताबिक जब उसके दिल में ये ख्याल होगा तो वो अपने आप को ठीक, नमाज भी ठीक पढ़ेगा, लिबास भी उसका ठीक रहेगा, चाल ढाल भी उसकी ठीक रहेगी, हर चीज़ में हमें कोई फिर ज़्यादा तंबीहात करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक दो मरतबा उसको बुलाकर बतला देना काफ़ी हो जाएगा। तो ये तरीका है, वो एक माहौल हमें अपने मदरसे में अपने इदारे के अंदर बनाना है। तरबियत जो है वो माहौल के ज़रिए से होती है। आपके इदारे के अंदर अदब का माहौल है असातिज़ा के, तो कोई ऐसा नया तालिब इल्म तो दूसरे माहौल से आया है जहाँ अदब का लिहाज नहीं किया जाता, वो भी जब यहाँ आएगा ना तो दूसरे तमाम तलबा को अदब करता हुआ देखेगा तो कहे बगैर वो खुद भी वही करने लगेगा। हमारे यहाँ मदरसे में ये है भाई, असातिज़ा जहाँ जूते निकालते हैं, अभी उस्ताद ने जूते निकाले नहीं कि फौरन कोई ना कोई तालिब इल्म दौड़ करके आके उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है। एक नया तालिब इल्म आया, वो सब ये मंजर देखता है तो वो भी यही काम करने लगता है। भैया ये चीज़ सिखलाने की ज़रूरत नहीं, एक माहौल होता है, उस माहौल की वजह से खुद ब खुद। हमारे यहाँ एक मरतबा हुकूमत के शोबे का एक बड़ा आफिसर जो है ना, किसी ने गलत शिकायत की होगी वो मदरसों के मुतालिक जैसे करते हैं लोग, आया था तहकीक के लिए, और वो जो है वो मोहतरम साहब के ऑफिस में बैठा आकर के उनसे बातचीत करने के लिए। अब वो तो अपने जूते निकाल कर जैसा कहें बैठते, उसने देखा अब वहाँ से कोई छोटा तालिब इल्म गुजरा होगा, उसने देखा ये जूते ऐसे ही पड़े, उसने सीधे दे करके रख दिए। ये चीज़ उसके ऊपर इतनी असर कर गई, कहने लगा वाह भाई यहाँ तो एक छोटे से छोटा तालिब इल्म जो है, हालांकि मैं तो उसका उस्ताद नहीं हूँ, मैं तो यहाँ मेहमान आया हूँ या आया हूँ तफ्तीश के लिए, लेकिन उसने मेरे जूते भी ठीक कर लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो एक अच्छा असर लेकर के गया और वहाँ हुकूमत ने उसने अच्छी रिपोर्ट पेश की मदरसे के मुतालिक, जो शिको कहा यहाँ का जो शिकायत की गई वो तो उसका तो यहाँ वजूद ही नहीं है। तो कहने का हासिल ये है कि हम अपने मदरसे के अंदर एक माहौल ऐसा, नमाज की पाबंदी का माहौल, हर तालिब इल्म जो यहाँ है अपने वक्त पर नमाज बराबर पढ़ता है, सुन्नतें बराबर अदा करता है, हर चीज़ का एहतमाम करता है, तो जो भी इस माहौल में आएगा वो चाहे वो अपनी जगह पर कितना ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ आने के बाद इस माहौल की वजह से खुद ब खुद वो बन जाएगा। इसलिए वह तरबियत की लाइन से भी اپنے مدرسے کے ماحول کو بہتر بنانا اتنا زیادہ مؤثر اور مفید ہے کہ اس کے بعد کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے. بس اس ماحول میں کسی کا آ جانا یہی اس کی اصلاح کے لیے کیا ہو جاتا ہے, کافی. تم بھی وہ لوگوں کو دیکھ کر کے, بڑے طلباء اچھے ہیں, وہ بھی اچھی طرح کام کرتے ہیں, ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی یوں ہی کرے گا. ایک عجیب چیز ہے یہاں پر. تو بہرحال لطیفہ سناؤں. ہمارے یہاں داخلہ ہوتا ہے تو داخلے کا فارم دیتے ہیں, تو فارم لینے کے لیے جب آئے گا وہ بال, پہلے بال بڑے ہوں تو اس کو کٹواؤ. تو جو فارم دینے والے ذمہ دار ہیں نا, تو پہلے جب تک کہ بال کٹے نہ ہوئے نہ ہوں وہاں تک فارم دیتے نہیں ہیں. چنانچہ ایک صاحب بمبئی سے آئے تھے اپنے بچے کو لے کر کے, اور ان کو بھی کہا بھائی بال کٹے, بال کٹوا کے لاؤ. خیر فارم دیا, فارم بھرا. اب امتحان ہوتا ہے, داخلہ امتحان. وہ طالب علم داخلہ امتحان میں ناکام ہوا تو اس کا داخلہ نہیں ہوا, تو ابھی وہ جو مولوی صاحب ذمہ دار ہیں وہ ان کے پاس آ کر کے اس کا باپ شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھلے میرے بچے کا داخلہ نہیں ہوا لیکن میں مدت سے کوشش کرتا تھا اس کے بال کٹوانے کی, لیکن وہ کٹوا نہیں رہا تھا. آپ کے یہاں داخلہ بھلے نہیں ہوا لیکن اس کے بال کٹ گئے, مجھے بڑی خوشی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر ہر اعتبار سے, نماز کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے, سنتوں کی پابندی کے اعتبار سے, بڑوں کی ادب و احترام کے اعتبار سے, کتابوں کے ادب و احترام کے اعتبار سے, ایسا ماحول بنائیں کہ جو بچہ بھی یہاں آوے اس ماحول کو دیکھ کر خود بخود وہ ہے باادب بنتا چلا جائے گا. اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کا یہ کام اکیلا منتظم جو مہتمم ہے یا جو ذمہ دار ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ کام تو سب کو مل کر کے کرنا ہوتا ہے. یہ ادارہ سب کا, اکیلے مہتمم کا نہیں ہے, یہ ادارہ سب کا ہے. اساتذہ کا بھی ان میں حصہ ہے, اساتذہ کو بھی اپنی قربانی, اپنی محنتیں اس کے اندر لگانی چاہیے. اور یہ نہ سوچے کہ ہم محنتیں کر رہے ہیں, ہماری اس محنت پر ہمارے جیسا ہمارے ساتھ سلوک نہیں. ہمیں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ایک یہ بچوں کی امانت, بچوں کی شکل میں ایک بڑی, بہت بڑی امانت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے. ان کی تعلیم, ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. مدرسے کا مہتمم یا مدرسے کا پرنسپال ہمیں کہے یا نہ کہے, ہم کو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. جب اس انداز سے آپ کریں گے نا, تو اس کی وجہ سے ایک دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کے قلب کو بھی ایک سکون کی کیفیت ہوگی. آج کل تو مزاج کیا ہو گیا, ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے فوراً مطالبہ ہوتا ہے. کوئی نئی ذمہ داری کسی استاد کو سونپی جاتی ہے, مثلا ذرا آپ نماز کے وقت تو یہ طلبہ کو ذرا آپ دیکھو نا, تب مول صاحب دن میں سوچتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سونپی تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا. ہر چھوٹی بڑی چیز پڑھانے کے علاوہ ہر کام کے معاملے میں ایک مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے, گویا ہم نے اپنی ان خدمات کی بنیاد جو ہے پیسوں پر رکھی. نہیں, ہماری خدمات کی بنیاد تو اللہ کی رضامندی پر ہے. اللہ ہم سے راضی ہو اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ پیسہ, یہ تنخواہ, یہ مقصود نہیں ہے, یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے ہم لے رہے ہیں, ورنہ ہمارا اصل کام تو یہ ہے کہ یہ خدمات ہم انجام دیں. اس لیے بہرحال یہ آپ حضرات اپنے کاموں کو اسی طرح پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ کم انجام دیں, اور اپنے اوقات کی پابندی بھی کریں. حاضری کے معاملے میں بھی ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بہت سی جگہ طلبا اساتذہ جو ہیں 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ دیر سے آتے ہیں. اب ایک گھنٹہ آپ کو دیا گیا, ایک پیریڈ دیا گیا, وہ 40 منٹ کا ہے, 45 منٹ کا ہے, اس میں سے 5 منٹ آپ نے کم کر دیے, 10 منٹ آپ نے کم کر دیے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس پیریڈ کے لیے جو مادہ اور جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے وہ جیسا پڑھانا ہوگا وہ اس میں کمی رہ جائے گی. ضرورت ہے کہ آپ اپنا پورا وقت اس کے اندر استعمال کریں, تاخیر نہ کریں. ایک استاد دیر سے آتا ہے 5 منٹ, وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں 5 منٹ ہی کا نقصان ہے, 5 منٹ کا نہیں. اس کے بعد پاس 10 طالب علم پڑھتے ہیں تو ہر طالب علم کے 5-5 منٹ خراب ہوئے, خود استاد کے 5 منٹ اور 10 طالب علموں کے 5 منٹ. गोया 55 मिनट का क्या हुआ, नुकसान हुआ। 5 कहने देखने को तो 5 मिनट है, लेकिन हकीकत में ये 55 मिनट का नुकसान है। इसलिए इन चीज़ों का लिहाज होना चाहिए, खुद अपना अमली पहलू भी, यानी हम खुद भी नमाज बा जमात का अहतमाम करें, इसी तरीके से कुरान की तिलावत का अहतमाम करें, सुन्नतों का अहतमाम करें, इसी तरीके से और तमाम चीज़ें जो है हम खुद करेंगे तो हमें फिर तलबा को कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें तलबा की निगाह में अपना उस्ताद जो है ना वो तो एक नमूना होता है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि तरबियत जो है वो बदरिए कुदवा, कुदवा का मतलब ये है कि उस्ताद की शख्सियत तलबा के लिए क्या है, एक नमूना रखती की हैसियत रखती है। तो जैसा उस्ताद होगा वैसा ही तलबा उसको देखकर अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें अपनी ज़ात के लिए ही नहीं बल्कि इन तलबा के लिए भी अपनी ज़ात को पूरे तौर पर बनाने का अहतमाम करना है। और देखिए आपके अंदर कोई खुदा न खास्ता कमी है तो आपके शागिर्द उस कमी को महसूस करेंगे। आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने में आपकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन नमाज के अंदर जो है आप जमात के अंदर देर से आते हैं, तो आपके शागिर्द आपस में जब आपके मुतालिक चर्चा करेंगे ना, हमारे उस्ताद माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन जमात में देर से आते हैं, वो आपको कहेंगे नहीं, उन ये महसूस करेंगे। वो आपस की गुफ्तगू में इसका चर्चा ज़रूर आएगा। आपने जो आप पढ़ा रहे हैं, आप जो है आपका नहव कच्चा है, उसमें कमज़ोरी है, तो आप चाहे उसूल आप जो है नूरुलिज़ा पढ़ाते हों, कुदूरी पढ़ाते हों, लेकिन कुदूरी पढ़ाने के दौरान वो आपके नहव का जो कच्चापन है वो कहीं ना कहीं जो है जाहिर हो जाएगा। आप कितने मसला बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो नहव की कमज़ोरी, तो आप तलबा आपस में बातचीत करेंगे, हमारे उस्ताद मसला बहुत अच्छा समझाते हैं, किताब बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नहव कमज़ोर मालूम होती है, वो आपको नहीं कहेंगे, लेकिन वो आप आपस में तबसरा करेंगे, ये कमज़ोरी। तो इसीलिए मैं तलबा को भी कहता हूँ कि पढ़ने के ज़माने में हर चीज़ अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, तो हमें पढ़ाने में भी इसका अहतमाम होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गया बहुत बड़ी मसूलियत है जो अल्लाह ताला ने बहैसियत एक मुदर्रिस और मुअल्लिम के आपके सर पर डाली है, तो हमें उस मसूलियत की अदायगी में जो है पूरा उतरने की ज़रूरत है। और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआओं का भी अहतमाम, अपने शागिर्दों के लिए भी दुआएँ होनी चाहिए, अपने नहीं खाली अपने लिए नहीं, उनको पढ़ाने के साथ साथ दुआओं का भी अहतमाम। अल्लाह तबारक ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाते हैं, लाअल्ला का बाकी उन नफ्स का ला आथारिम इल्लम यूमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, ए नबी आप कहीं ईमान ये न ईमान लावें इस बुनियाद पर अफसोस के अंदर अपने आप को आप हलाक न कर दें। गोया उस्ताद को अपने शागिर्द के साथ ताल्लुक़ होना, ऐसा ताल्लुक़ जैसा एक बाप को अपने बेटे के साथ है। और हकीकत भी है कि ये मानवीय एतबार से, एक तो है जिस्मानी एतबार से तो हमारी औलाद वो है, लेकिन ये बच्चे तलबा जो हैं वो मानवीय एतबार से हमारे लिए औलाद की हैसियत रखते हैं। बल्कि मैं तो एक कदम आगे ही कहूँगा कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो इन बच्चों के ज़रिए से आगे वो जो खिदमत अंजाम देंगे और जो फ़ायदा आपको पहुँचेगा कुदरती तौर पर सवाब का, वो होगा जो आपके बेटों की तरफ से भी आपको नहीं पहुँचेगा। तो वो आपकी जो हकीकी औलाद है उससे आपको जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए उससे कई गुना फ़ायदा ये बच्चे पहुँचाएंगे। और जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, हम अभी क्या किसी के मुतालिक पेशीन गोई नहीं कर सकते कि ये आगे क्या बनने वाला है, इसलिए उसकी तरबियत में हमारा जितना भी हिस्सा होगा, अगर आगे जाकर अल्लाह ने उसकी किस्मत में ये लिखा है कि उसके ज़रिए से एक बड़ी गोया बड़ी बड़ी तादाद को हिदायत हासिल हो, तो गोया उसके उस काम में कारनामे में हमारा भी हिस्सा होगा। तो हमें जो है ना अपने इस काम में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। एक दुकानदार है, एक ताजिर है, वो दिन भर में अगर $100 कमा सकता है तो वो 99 पर राजी नहीं होगा। 100 से ऊपर जाने की तो कोशिश करेगा लेकिन 100 से कम पर राजी नहीं होगा। ऐसे ही हम अपने तलबा को जैसा बना सकते हैं उससे कम पर तो राजी ना हो बल्कि उससे ज़्यादा उम्दा सिफात वाला बनाने की कोशिश करें, क्यों? यही हमारा सरमाया है। ताजिर का सरमाया तो दुकान है, वो इस दुनिया तक महदूद है, मरेगा तो यहाँ छोड़ के जाएगा। लेकिन ये तलबा जो हैं, हमारा ऐसा सरमाया है जो आखिरत में भी हमारे लिए काम आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरत है कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए। इंशाल्लाह उसका नतीजा ये होगा कि वो तलबा अगर कामयाबी के साथ आगे फारिग हुए काम कर रहे हैं तो वो पूरी ज़िंदगी आपको याद करेंगे, आप उनकी दुआओं का एक जुज बन जाएंगे हमेशा के लिए, कि हमारे फ़लाँ उस्ताद की शफ़क़त, उनकी मोहब्बत और उनकी तरबियत के नतीजे में मुझे अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया है। वो एहसान फरामोश नहीं होंगे, इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने इन जिम्मेदारियों को जैसा कि उसका हक़ है। और इस सिलसिले में हमारे अकाबिर के जो तरीक़े रहे हैं, बाकायदा इस मौजू पर किताबें भी हैं। हज़रत क़ारी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है आदाबुल मुअल्लिमीन, एक रिसाला तो है आदाबुल मुतअल्लिमीन, तलबा के आदाब, और आदाबुल मुअल्लिमीन भी है, उसको हम पढ़ें। और भी इसकी मौजू पर और भी किताबें हैं, इसको पढ़ें और हम अपने आप को अच्छे से अच्छा मुअल्लिम और मुदर्रिस बनाने का एहतमाम करें, अल्लाह ताला से दुआएं भी करें। तो उसका नतीजा ये होगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़ात से तलबा को, मदरसे को, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे, और ये चीज़ आपकी आखिरत की कामयाबी के लिए ज़ामिन होगी। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تو نے اے اللہ تیرے دین کا علم پڑھانے کی سعادت اور توفیق ہم کو عطا فرمائی، اے اللہ اس نعمت کی جو قدردانی ہونی چاہیے اس کا جیسا حق ادا کیا جانا چاہیے اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ان اس عمل کو تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، محض دنیا طلبی مقصود نہ ہو بلکہ دین کی اشاعت اور ترویج اصل مقصود ہو، اللہ اس انداز سے ان خدمات کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، تیری رضامندی والے کام ہم سے کروا لے، ارے اللہ ہمارے اسلاف نے جس طرح اللہ اس خدمت کو انجام دیا تھا اور اس فریضے کو ادا کیا تھا، اللہ اسی انداز سے انہی نیتوں کے ساتھ اور انہی محنتوں کے ساتھ اللہ اس فریضے کو ادا کرنے کی اور اس کام کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے باوجود اس میں کوئی کوتاہی غفلت رہ جائے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اس کوتاہی کی وجہ سے اس بڑی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اس مدرسے کو بھی ہر اعتبار سے قبول فرما، اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمه.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔